ये कल का पाठ भूमिकात्मक पाठ था, आज से हम ग्रंथ की पंक्ति को शुरू करेंगे। महाभाष्य की बहुत सारी व्याख्याएं उपलब्ध हैं मार्केट में, लेकिन चारुदेव शास्त्री जी का जो हिंदी व्याख्यान वाला महाभाष्य है, नवाहनिक में उपलब्ध होता है, वह मेरे हिसाब से ठीक है पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो वह ग्रंथ अगर हो आपके पास तो अच्छी बात है, उसको खोल लीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनते रहिए और पंक्ति को देखते रहिए। दोनों काम करना है, सुनना भी है और देखना भी है, तो आराम से जो है ना सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आपको आनंद भी बहुत आएगा इस महाभाष्य के पाठ को पढ़ने में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पतंजलि ने अर्थ शब्दानुशासनम ऐसा कह करके अपने महाभाष्य नामक ग्रंथ की शुरुआत की है। तो अर्थ शब्दानुशासनम में तीन शब्द हैं, एक है अथ, दूसरा है शब्द, तीसरा है अनुशासन। इसमें शब्दानुशासनम में समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें है। तो कैसा विग्रह होगा, शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। क्या कहेंगे विग्रह, शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, शब्दों का अनुशासन। ये अर्थ हुआ किसका, शब्दानुशासनम का। जैसे विद्यालय होता है ना, विद्यानाम आलय विद्यालय, उसी तरह से शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम। अब यहाँ शब्दानाम में जो षष्ठी विभक्ति है, ये किस अर्थ में ये षष्ठी विभक्ति आई है, ये थोड़ा विचार कर लेते हैं। आप ये तो जानते होंगे कि षष्ठी होती है संबंध अर्थ में, जहाँ संबंध की प्रतीति होती है वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। इसके साथ साथ ये तो फेमस है, इसके साथ साथ जहाँ पर कृत प्रत्यय का योग होता है, कृदंत प्रत्यय रहता है, कृत प्रत्यय का जहाँ योग रहता है वहाँ पर कर्ता अर्थ में भी षष्ठी होती है और कर्म अर्थ में भी षष्ठी होती है। ध्यान रखिएगा, संबंध अर्थ में षष्ठी तो होती ही है, उसके लिए सूत्र है षष्ठी शेषे। तो षष्ठी शेषे में जो शेषे है ना, उस शेषे का ही अर्थ होता है संबंधे, माने षष्ठी शेषे माने षष्ठी संबंधे, संबंधे षष्ठी इत्यर्थ, माने संबंध में षष्ठी होती है षष्ठी शेषे सूत्र से। एक तो ये है, दूसरा ये है कि कृत प्रत्यय के योग में कर्ता में भी षष्ठी होती है और कर्म में भी षष्ठी होती है, उसके लिए दो सूत्र हैं। एक है कर्तृकर्मणोः कृति, कारक प्रकरण में आपने सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा होगा कर्तृकर्मणोः कृति, थोड़ा गौर करिए, कर्तृकर्मणोः माने कर्तृ अर्थ में और कर्म अर्थ में, कृति कृति माने कृत प्रत्यय के योग में। तो कृत प्रत्यय के योग रहने पर, योग का अर्थ होता है संबंध, कृत प्रत्यय के साथ संबंध रहने पर कर्ता अर्थ में भी षष्ठी होती है और कर्म अर्थ में भी षष्ठी होती है, ऐसा सूत्र का कहना है कर्तृकर्मणो कृति का। और एक इसी तरह का सूत्र है उभय प्राप्तौ कर्मणि, उभय प्राप्तौ कर्मणि का पर सूत्र के शब्द पर ध्यान दीजिए, उभय प्राप्तौ, उभय से ले लीजिए कर्ता और कर्म दोनों को, माने कर्ता अर्थ में भी अगर प्राप्त हो और कर्म अर्थ में भी प्राप्त हो तो वहाँ पर कहाँ पर षष्ठी करनी चाहिए, किस अर्थ में षष्ठी करनी चाहिए, तो कहता है उभय प्राप्तौ कर्मणि, तो फिर कर्म अर्थ में षष्ठी करनी चाहिए, माने जहाँ पर कर्ता अर्थ में भी षष्ठी की प्राप्ति हो और कर्म अर्थ में भी षष्ठी की प्राप्ति हो, माने उभय प्राप्ति हो, तो वहाँ पर कर्म अर्थ में षष्ठी नहीं करके, अच्छा कर्ता अर्थ में षष्ठी नहीं करके कर्म अर्थ में षष्ठी करनी चाहिए, ऐसा उभय प्राप्तौ कर्मणि सूत्र का कहना है। तो आपने देखा कि कर्तृकर्मणो कृति से कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है, और उभय प्राप्तौ कर्मणि उसमें नियम करता है कि अगर कर्ता कर्म दोनों में षष्ठी की प्राप्ति है तो फिर कर्म अर्थ में ही षष्ठी करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको ये ज्ञान हुआ अभी कि संबंध अर्थ में भी षष्ठी होती है और कर्ता कर्म अर्थ में भी षष्ठी होती है, और जहाँ पर कर्ता कर्म दोनों अर्थ में प्राप्ति हो वहाँ पर कर्म अर्थ में ही षष्ठी होती है। इसके लिए तीनों बातों के लिए तीन सूत्र हो गए। संबंध में षष्ठी होती है इसके लिए षष्ठी से सूत्र है, कर्ता अर्थ में और कर्म अर्थ में षष्ठी हो इसके लिए कर्तृकर्मणो कृति सूत्र है, और उभय प्राप्ति में कर्म अर्थ में ही षष्ठी हो, कर्ता अर्थ में षष्ठी न हो, इसके लिए उभय प्राप्तौ कर्मणि ये सूत्र है। अब यहाँ पर एक अब इन तीनों में भेद समझ लीजिए। जब षष्ठी से हम षष्ठी तक करते हैं तो वहाँ पर जो है ना षष्ठी तत्पुरुष समास आराम से हो जाता है। षष्ठी तत्पुरुष समास करने के लिए बहुत छोटा सा सूत्र है षष्ठी, तो षष्ठी सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है जहाँ पर हम संबंध में षष्ठी करते हैं या षष्ठी से जहाँ षष्ठी करते हैं वहाँ समास हो जाता है षष्ठी सूत्र से। अब कर्तिकर्मणो कृति से अगर हम षष्ठी करते हैं माने कृत प्रत्यय के युग में कर्ता अर्थ में षष्ठी करते हैं या कर्म अर्थ में षष्ठी करते हैं तो वहाँ भी जो है ना समास होता है। इसके लिए एक वार्तिक है कृद योगा च षष्ठी समस्यते। इसका कहना है कृद योगा माने कृत प्रत्यय के योग में जहाँ षष्ठी हो है उस वहाँ पर समास हो जाता है। तो इस वार्तिक के द्वारा कृत योगा च षष्ठी समस्यते, इस वार्तिक के द्वारा कर्तिकर्मणो कृति से जहाँ पर हम षष्ठी करते हैं वहाँ पर भी षष्ठी समास हो जाता है। अब तीसरा जो है उभय प्राप्तो कर्मणि, इसमें एक ये गड़बड़ है। उभय प्राप्तो कर्मणि से जहाँ पर कर्म अर्थ में हम षष्ठी करेंगे वहाँ पर समास नहीं होता है षष्ठी समास, वहाँ पर जो है ना निषेध हो जाता है। कर्मणि च एक सूत्र है, उस कर्मणि च सूत्र के द्वारा समास का निषेध हो जाता है। तो आपने देखा कि षष्ठी से षष्ठी करते हैं तो भी समास होता है, कर्तिकर्मणो कृति से अगर षष्ठी करते हैं तो भी समास होता है, वार्तिक लगाना पड़ता है कृतयोगाच षष्ठी समस्यते। और जब उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी करते हैं तो वहाँ पर समास नहीं होता, उसका कर्मणि च सूत्र के द्वारा समास का निषेध हो जाता है। तो अब इस तरह से तीन तरह की षष्ठी का जो अभी आपको परिचय मिला है, अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम में शब्दानाम यहाँ पर जो आम विभक्ति है ngas os आम षष्ठी बहुवचन विभक्ति, यहाँ पर जो षष्ठी विभक्ति है वो किस अर्थ में आया है, षष्ठी किस अर्थ में विभक्ति आई है, किस सूत्र से आई है। तो इसके लिए व्याख्याकार लोग कहते हैं कि शब्दानाम में जो षष्ठी है ये कर्तिकर्मणो कृति सूत्र के द्वारा यहाँ पर षष्ठी की गई है। तो कर्तिकर्मणो कृति से जो षष्ठी होती है वह कर्ता अर्थ में भी होती है और कर्म अर्थ में भी होती है। तो यहाँ किस अर्थ में षष्ठी की गई, तो कहते हैं कि कर्मणि षष्ठी, कर्म अर्थ में यहाँ पर षष्ठी हुई है कर्तिकर्मणो कृति सूत्र से। अब देखिए कि जिस अर्थ में षष्ठी करेंगे तो षष्ठी विभक्ति का अर्थ वही होगा। तो शब्दानाम अनुशासनम में, शब्दानाम में जो आम षष्ठी विभक्ति है अगर वह कर्म अर्थ में आती है कर्तिकर्मणोकृति से तो उस आम विभक्ति का अर्थ क्या होगा, कर्म। तो शब्दानाम अनुशासनम का अर्थ हो जाएगा शब्द कर्मकम अनुशासनम। क्यों ऐसा अर्थ हुआ, क्योंकि षष्ठी वहाँ पर कर्म अर्थ में आई है, किस सूत्र से, कर्तिकर्मणो कृति सूत्र से, इसीलिए यहाँ पर शब्दानुशासनम का अर्थ होगा शब्द कर्मकम अनुशासनम, माने ऐसा अनुशासन जिसका कर्म शब्द होता हो। शब्दानुशासनम मतलब शब्द कर्मकम अनुशासनम, शब्द कर्मकम अनुशासनम माने ऐसा अनुशासन जिसका कर्म शब्द हो, अर्थात जहाँ पर शब्द का अनुशासन किया गया हो उसे हम शब्दानुशासन कहते हैं। तो इस तरह से व्याख्याकार लोग कहते हैं कि शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम या षष्ठी तत्पुरुष समास है, और यहाँ जो षष्ठी हुई है यह षष्ठी कर्तिकर्मणोकृति सूत्र से कर्म अर्थ में हुई है, इसीलिए शब्दानुशासनम का अर्थ होता है शब्द कर्मकम अनुशासनम, और समास होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वह जो वार्तिक है कृद योगाच षष्ठी समस्यते, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये तो हो गया व्याख्याकार, उन्होंने निर्णय दिया। अब इसमें शंका समाधान होता है, कहते हैं कि उभय प्राप्तो कर्मणि से इसमें क्यों नहीं षष्ठी करेंगे, तो इसमें जान लीजिए उभय प्राप्तो का तात्पर्य मैंने बताया था कि जहाँ कर्ता में भी प्राप्त हो और कर्म में भी प्राप्त हो वहाँ पर कर्म अर्थ में ही षष्ठी होती है, ऐसा कहना है। इसको अब थोड़ा सा और विवेचना पूर्वक समझिए कि जहाँ पर कर्ता का भी प्रयोग किया हो गया हो और कर्म का भी प्रयोग किया गया हो वहाँ पर जो है ना कर्म अर्थ में षष्ठी होती है, ऐसा इसका अर्थ है। उभय प्राप्तो कर्मणि का क्या अर्थ है, जहाँ पर कर्ता शब्द का भी प्रयोग हो और कर्म शब्द का भी प्रयोग हो वहाँ पर कर्म में षष्ठी करनी चाहिए। अब यहाँ गौर करिए शब्दानुशासनम ये जो वाक्य है इसमें कर्म का तो प्रयोग है, क्योंकि अनुशासन का कर्म कौन है, शब्द है, तो शब्द का जो है कर्म का, कर्म पद का यहाँ पर प्रयोग है, लेकिन कर्ता पद का यहाँ पर प्रयोग नहीं है, क्योंकि शब्दानुशासन के कर्ता कौन है, पाणिनि है, तो पाणिनि का यहाँ पर उल्लेख है क्या, पाणिनि शब्द का उच्चारण है क्या, पाणिनेः शब्दानुशासनम, ऐसा तो नहीं है, सीधे है शब्दानुशासनम, तो शब्दानुशासनम इस वाक्य में कर्म जो है शब्द इसी का केवल उल्लेख है, कर्ता का उल्लेख नहीं है, और जहाँ पर कर्ता का भी उल्लेख हो और कर्म का भी उल्लेख हो वहीं उभय प्राप्ति होती है, और वहीं पर उभय प्राप्त कर्मणि से कर्म में षष्ठी होती है, तो यहाँ पर केवल कर्म का उल्लेख है, कर्ता पाणिनि का उल्लेख नहीं है, इसीलिए उभय प्राप्त कर्मणि सूत्र से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, और जब षष्ठी विभक्ति उससे नहीं होगी तो फिर कर्मणि च जो निषेध करता है षष्ठी समास का वो भी निषेध नहीं करेगा, क्योंकि उभय प्राप्तो कर्मणि इति सूत्रेण यत्र षष्ठी विधीयते तत्रैव कर्मणि च इति सूत्रेण षष्ठी समासस्य निषेधः क्रियते, तो अत्र तु कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण षष्ठी जाता, न तु उभय प्राप्तो कर्मणि इति सूत्रेण षष्ठी, तस्मात् अत्र समासः संभवो भवति। तो इस तरह से आपको शब्दानुशासनम में जो समास और विग्रह का जो मामला है, षष्ठी का जो मामला है, इस मामले को हमने आपको स्पष्टतया बताया। अब समास विग्रह षष्ठी विभक्ति और उसके अर्थ को तो आपने समझा, अब यहाँ जो तीन शब्द का जो प्रयोग है, अथ शब्द, शब्द शब्द और अनुशासन शब्द, इनके शब्दों के एक एक का अर्थ भी समझ लीजिए। अथ जो है, अथ का अर्थ होता है प्रारंभ, यद्यपि अथ शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं, ये अमरकोश में कहा गया है कि अथ शब्द का मंगल अर्थ होता है, अनंतर अर्थ होता है, आरंभ अर्थ होता है, प्रश्न अर्थ होता है, कार्ष्ण्य अर्थ होता है, कार्ष्ण्य माने परिपूर्णता, इतने सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ जो अथ शब्दानुशासनम में अथ है इसका अर्थ है प्रारंभ। फिर दूसरा शब्द है शब्द, तो शब्द किसको कहते हैं, शब्द क्या है, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में पतंजलि स्वयं जो है भाष्य में बताने जा रहे हैं, तो उसको भाष्य के साथ ही समझेंगे कि शब्द क्या होता है। तीसरा शब्द जो है अनुशासनम, इसको समझ लीजिए, अनुशासन क्या होता है, इसको भी आप चाहें तो लिख लीजिए, क्योंकि दो नंबर में पूछ सकता है इसको, अनुशिष्यन्ते, अनुशिष्यन्ते बराबर असाधु शब्देभ्यो विविच्या, आराम से लिखिए, अनुशिष्यन्ते बराबर असाधु शब्देभ्यो, अनुशिष्यन्ते बराबर असाधु शब्देभ्यो विविच्य, असाधु शब्देभ्यो विविच्य साधु शब्दाः, असाधु शब्देभ्यो विविच्य साधु शब्दाः विविच्यन्ते, साधु शब्दाः विविच्यन्ते येन तत् अनुशासनम्, साधु शब्दाः विविच्यन्ते येन तत् अनुशासनम्, फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, अनुशिष्यन्ते, ऐसे शॉर्टकट में व्युत्पत्ति तो यही होगी कि अनुशिष्यन्ते ये न इति अनुशासनम, अनुशिष्यन्ते ये न इति अनुशासनम, माने जिसके द्वारा अनुशासन किया जाता है उसे हम अनुशासन कहते हैं। अब ये जो अनुशिष्यन्ते है इसका क्या अर्थ होता है, तो उसको बराबर करके हमने बताया कि असाधु शब्देभ्यो विविच्य साधु शब्दाः बोध्यन्ते, अनुशिष्यन्ते का मतलब होता है कि असाधु शब्देभ्यो विविच्य, माने असाधु शब्दों से अलग करके, विविच्य माने अलग करके, तो असाधु शब्दों से अलग करके जहाँ पर साधु शब्दाः बोध्यन्ते, जहाँ पर साधु शब्द का बोध कराया जाता है, जिसके द्वारा बोध कराया जाता है उसी का नाम है अनुशासन। तो शॉर्टकट विग्रह हो गया अनुशासनम का, अनुशिष्यन्ते ये न इति अनुशासनम, और इसका थोड़ा सा बड़ा करके अगर विग्रह कर किया हो गया अनुशिष्यन्ते अर्थात असाधु शब्देभ्यो विविच्य साधु शब्दाः बोध्यन्ते ये न तत् अनुशासनम, माने असाधु शब्दों से अलग करके जिसके द्वारा साधु शब्दों को बताया जाए उसे हम अनुशासन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, असाधु शब्दों से अलग करके साधु शब्दों को जिसके द्वारा बताया जाए उसे हम अनुशासन कहते हैं। है, तो अनुशासनम का अर्थ यहाँ पर शास्त्र हो गया, क्योंकि तो शास्त्र यही करता है, व्याकरण शास्त्र यही करता है। क्या करता है कि दो तरह के शब्द हैं, असाधु शब्द हैं और साधु शब्द हैं, तो असाधु शब्दों से अलग करके साधु शब्दों को जो है व्याकरण शास्त्र बताता है। इसीलिए व्याकरण शास्त्र को हम शब्दानुशासन शास्त्र भी कहते हैं। व्याकरण का कोई पूछे ना कि व्याकरण शास्त्र का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो आप ये कह दीजिएगा कि व्याकरण शास्त्र का पर्यायवाची शब्द है शब्दानुशासनम, क्योंकि शब्दानुशासनम का जो अभिप्राय है वही अभिप्राय व्याकरण शास्त्र का भी है। शब्दानुशासनम में जो अनुशासन शब्द है उसका अर्थ एक शब्द में कोई पूछे तो शास्त्र कहिए। तो इस तरह से अनुशासनम का विग्रह आपने समझा कि अनुशिष्यन्ते अर्थात असाधु शब्देभ्यो विविच्य साधु शब्दा बोध्यन्ते येन तत् अनुशासनम। यहाँ पर करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय हुआ है, जैसे व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम, वहाँ पर बी आंग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय होता है करण अर्थ में। उसी तरह से अनुशासनम में भी अनुशिष्यन्ते येन इति अनुशासनम, यहाँ पर अनुपूर्वक सास धातु से करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय हुआ है। तो इस तरह से अनुशासनम का अर्थ आपने समझा कि जिसके द्वारा असाधु शब्दों से अलग करके साधु शब्दों को बताया जाए उसे हम अनुशासन कहते हैं। अथवा शब्द का भी अर्थ जान लिया आपने कि अथवा शब्द के यद्यपि अनेकों अर्थ कोशकार ने बताए हैं, लेकिन यहाँ पर अथ शब्दानुशासनम में अथ का अर्थ प्रारंभ होता है। और फिर तीसरा जो था कि शब्द, तो उस शब्द के बारे में मैंने कहा कि मैं स्वयं नहीं बता करके ग्रंथ की पंक्तियों के द्वारा जो है उसको मैं बताऊंगा। तो इसका जो है अर्थ शब्दानुशासनम, ये जो पाणिनि की पंक्ति है इसकी स्वयं व्याख्या करते हैं, क्योंकि भाष्य के लक्षण में आपने देखा स्वपदानि च वर्ण्यन्ते, तो अपने ही जो उच्चारित पद हैं अर्थ शब्दानुशासनम इसकी व्याख्या पतंजलि कहते हैं कि अथ इति अयम शब्द अधिकारार्थ प्रयुज्यते, कि अथ इति अयम शब्द माने अथ शब्दानुशासन में जो अथ यह शब्द है यह अधिकारार्थ प्रयुज्यते, अधिकार अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त है, प्रयुज्यते माने प्रयुक्त है या प्रयोग किया जाता है। अधिकार अर्थ में तो अधिकार का अर्थ प्रारंभ होता है, तो अधिकारार्थ प्रयुज्यते माने प्रारंभार्थ प्रयुज्यते। यहाँ अथ शब्दानुशासन में अथ शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह अधिकारार्थ है अर्थात प्रारंभार्थ है, प्रारंभ अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। इस तो अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य का पूरा मतलब क्या हुआ, तो आगे कहते हैं कि शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, ये इसका अर्थ है कि शब्दानुशासन नाम का जो शास्त्र है यहाँ से अधिकृत समझना चाहिए, अर्थात यहाँ से प्रारंभ इसका शब्दानुशासन नाम के शास्त्र का प्रारंभ यहाँ से समझना चाहिए। अथ शब्दानुशासन माने शब्दानुशासन नाम के शास्त्र का प्रारंभ यहाँ से समझना चाहिए, ये अर्थ होता है। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं।